शैतान जो है ना मेरा और आपका अजली और अब्दी दुश्मन है, और शैतान का तो काम ही ये है कि बुराइयों में और बेहयाइयों के काम में हमें मुब्तिला करे और हमारे ईमान को तबाहो बर्बाद कर दे, हमें गुमराह करे। शैतान का इंसान पर सबसे पहला वार क्या होता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी पर इंसान को आमादा करता है, शिर्क की नई नई राहें सुझाता है और बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। और फिर कम लोग हैं जो शैतान से जो है वो बच पाते हैं ना। तो आप देखें कि तौहीद से गुमराह करना और शिर्क पर आमादा करना, ये शैतान का पहला वार है। और दूसरा वार फिर क्या होता है कि वो लोगों को बेहयाई के कामों में मुब्तिला करता है और बेहयाई को, उरियानी फुहाशी को बड़ा खूबसूरत बनाकर जो है वो पेश करता है। और जन्नत में भी शैतान ने यही काम सर अंजाम दिया था ना, कैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा जो थी उनको क्या किया था, खूबसूरत वादे सब्ज बाग दिखाए और सबसे पहला वार उन पर क्या किया था, अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा किया, शिर्क उन्होंने किया। शिर्क का मतलब क्या होता है, शिर्क सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और के आगे जो है वो पूजा पाठ की जाए, ये भी शिर्क है कि अल्लाह को छोड़कर जिसका कहना माना जाए, शरीक किया ना अल्लाह के इख्तियारात में, अल्लाह की इबादत में। तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा जो है, हव्वा अलैहिस्सलाम को खूबसूरत वादे और सब्ज बाग दिखाए, यहां तक के वो अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा हो गए। और क्या नाफरमानी उन्होंने की थी कि अल्लाह ताला ने कहा था ला तक्रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना, खाना तो दूर की बात है ना, करीब भी ना जाना। लेकिन शैतान ने कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो हमेशगी की जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। देखे ना, झूठे वादे। और नंबर वन अल्लाह की नाफरमानी उसने करवाई, यानी गोया के शिर्क किया उन्होंने। दूसरी बात शैतान ने क्या की कि इन दोनों का लिबास उतरवा दिया है ना, तो बेहयाई। अब आप देखें कि पहला वार शिर्क और दूसरा वार क्या था कि फुहाशी फैलाना इसका काम था, और आज भी शैतान और उसके चेले जो हैं वो इसी चीज पर लगे हुए हैं कि घर की चार दीवारी औरत के लिए कैद खाना। हालांकि आज उम्मते मुस्लिमा अगर हम गौर करें तो हमारे हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना बिल्कुल बिखर गया है। आज मर्द का काम तो है ही कि वो बाहर जाकर कमाई करे, तो औरत का काम क्या अल्लाह ताला ने सौंपा है, हमें हदीस से क्या पता चलता है कि बच्चों की तालीम और तरबियत करें, बच्चों बच्चों के साथ लगे, और शोहर को बाहर का काम दिया, औरत को घर का काम दिया। लेकिन शैतान क्या वार करता है, वो कहता है कि ये तो औरत की आजादी पर डाका है, वो घर बैठी रहती है, इसको घर से बाहर निकालना चाहिए, ये तो बड़ी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक औरत घर की चार दीवारी से निकल कर जो है ना बेहिजाब होकर जो है वो मर्द के शाना बशाना जो है वो काम ना करे। और फिर वो ये भी कहता है कि अगर औरत घर के अंदर रहती है ना तो मुल्क की मईशत जो है ना उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है ना। फिर वो ये भी कहता है कि जो है वो औरतों के हकूक जो है ना, इस्लाम ने उनको औरतों के हकूक से महरूम कर दिया है। तो आप देखें के मुख्तलिफ वो चिकनी चुपड़ी लगाकर फिर करता क्या है, वो ये चाहता है कि औरत को नंगा कर दे, वो औरत जो के घर की मलका जिसको बनाया गया, वो औरत जिसकी तालीम और तरबियत की जाए तो जन्नत की बशारत दी गई है ना, जिसको माँ बनाकर जन्नत उसके कदमों के नीचे रख दी गई, वो औरत जो माँ के रूप में जो बड़े बड़े लीडर रहनुमा जो है वो हर एक बड़े लीडर एक हर बड़े आदमी के पीछे एक माँ का हाथ है, एक माँ का किरदार है। आप सुल्तान टीपू को देख लें, आप मोहम्मद बिन कासिम को ले लें, आप जो है मूसा बिन नसीर को ले लें, आप जो है वो कायदे आजम को ले लें, आप यानी किसी भी कौम के जो बड़े लीडर हैं उनकी आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनके माँ बाप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जैसे मैं खुर्रम मुराद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ रही थी तो उनकी वालदा जो थी वो बहुत चाहती थी कि वो अरबी सीखे ना, कि जिससे उनको कुरान का तर्जमा जो है वो आए। और इसी तरह जो है वो मैं कई लोगों की, बड़े लोगों की जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें उनके माँ बाप, और खास तौर पर बाप तो जॉब करने चला जाता है, माँ होती है जो बच्चे को बहादुर बनाती है, बच्चे को तालीम देती है, तहजीब सिखाती है, इखलाक के जेवर से उसको आरास्ता करती है ना। तो अब आप खुद ही सोचे कि माँ जब घर से निकल जाएगी, बाप निकलेगा साथ ही माँ भी निकल जाएगी, और बाद वक्त माँ पहले निकलती है, बाप बाद में निकलता है, बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों की, बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, वहां जाके पढ़ाई की कि नहीं, कब आए, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और जब इंसान बाहर से थक हार कर आता है ना, फिर वो इतनी चीजों में अंदर तक नहीं जाता कि बच्चे के बैग में वो होमवर्क लाया कि नहीं, बच्चे के बैग में क्या है, बच्चा किन लोगों से मिल रहा है, कब स्कूल से आया, उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, और ना उसके पास फिर इतनी जो है वो हिम्मत रहती है। और आप देखेंगे वो मर्द बनती है, और उसके साथ जो है फिर वो जो है वो औरत, तो उसको बनना ही है, वो ये नहीं कहेगी कि मैं जो हूँ माँ नहीं बनना मैंने। माँ तो अल्लाह ने, कुदरत ने माँ के पास वो फैक्ट्री दी है जिससे बच्चे भी पैदा होने हैं, बच्चों को उसने जन्ना भी है, और उसके साथ बच्चों की तालीम और तरबियत का फरीजा सर अंजाम देना है। लेकिन शैतान जो है वो क्या करता है कि औरत को उसके असल मकसद जिंदगी से दूर करके, घर से निकाल कर, फिर वो क्या करता है कि वो चाहता है कि औरत का मर्द के साथ आजादाना इख्तलात हो, मेलजोल हो, और इस तरह बदकारी की राहें बड़ी आसानी से जो है वो खुलने लगती हैं। और आप देखेंगे, और सिगरेट भी अगर बेचना है ना, तो औरत सिगरेट पी रही है, कोई इश्तेहार है, फोम के गद्दे बिकने हैं तो औरत को वहां पे लिटाया हुआ है, गोया कि औरत जो है वो एक मॉडलिंग का सबसे मौसर जरिया है। और बल्कि यहाँ पे बास कंपनियां ऐसी हैं, वो यानी यूथ को इस बात पर वो क्या करते हैं कि जैसे ऐसे मौसमों में या ऐसे दिनों में जब लोग बाहर ज्यादा निकलते हैं ना, तो बच्चों को कहते हैं कि तुम अपनी शर्ट थोड़ी सी ऊंची करो या नीची करो, या मतलब इस तरह से उनके ऐसे पोज में तस्वीरें लेना चाहते हैं कि जिसको फिर वो आम जो है वो दे सके, और उसपे उनको पैसे उनसे जो है वो लेते हैं। जैसे एक सच्ची कहानी कि ये जो ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं, तो उसमें भी एक औरत की को कुछ पिला कर उस ब्यूटी पार्लर वालों ने उसकी जो है ना ऐसे पोज में तस्वीरें ली, और बाद में उस औरत की फिर तलाक हो गई। पहले ही बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आपको पता है हमें खूबसूरत बनने का और जुनून भी है। कुछ जो अल्लाह ने फितरत में हुसन दिया है, जो हया, हया औरत का बेहतरीन जेवर है, लेकिन बाज़ औक़ात आउट ऑफ द वे हम जब जाते हैं, तो वो कहती है कि मैं, मुझे जैसे होश नहीं था, उसने कहा तुम्हें थकन थोड़ी सी होगी है, लेकिन तुम लगोगी बड़ी खूबसूरत, लेकिन कुछ पिला दिया उस औरत को ना, और वो बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर था, लेकिन वो उसकी कुछ तस्वीरें बनाना चाहते थे, फिर उसकी वो तस्वीरें उन्होंने कहीं बेची कि क्या किया, और फिर कभी किसी तरह वो उसकी तस्वीरें उसके शोहर के पास आ गई, जो वीडियो बनी थी शादी के बाद कुछ सालों बाद, और फिर उसकी तलाक हो गई उस औरत की, और ये सच्चा वाक्य है। तो और आप देखें कि एक दफा ये दुबई साइड पर एक बड़ी मशहूर वीडियो सीडी थी, शरीफों का मुजरा, ये शरीफ घरों में, मतलब आम घरों में जो ये जो बच्चे नाचते हैं और मेहंदी और उस पर, तो बाहर से घर वाले इंतजाम करते हैं कि कोई आके तस्वीरें बनाए, वीडियो बनाए, तो जब आपके हाथ से निकल गई चीज, अब वो कहाँ जा रही है किस, उन्होंने हर, यानी वो कोई दुकान थी और उन्होंने हर घर में से जो इस तरह बनाई थी उसके कुछ कुछ पोज लेकर और उसको एक बनाकर, तो बाहर जो थी वो चल रही थी, तो फिर उस तरह उस घर तक भी बात पहुंची। तो इसमें क्या, किस बात की फिर जरूरत है कि जो है वो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है वो नेकी और बदी में तमीज पैदा करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात में हमारे लिए जो है वो खैर है, और उसी में मेरी और आपकी जो है वो भलाई है, और शैतान के जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो फुहाशी और उरियानी के कामों में जो है ना बहुत आगे निकलते हैं, और बहुत से काम तरक्की के नाम पर, आप खूबसूरत लगोगी और तरक्की करोगी, आप सबका दिल मोह लोगी, तो शैतान क्या करता है ऐसे कामों में उलझा कर जो है वो इंसान को बड़े बड़े फितनों में जो है वो मुब्तिला कर देता है। और यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतवज्जो कर रहे हैं और तंबीह कर रहे हैं और बहुत प्यार से कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, मेरा और आपका नाम क्या है, मुसलमान, हमारा और आपका नाम जो अल्लाह ने रखा वो मुसलमान है, ईमान लाने वाले, ए ईमान लाने वालों, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, पे शैतान के कदमों पर ना चलना, शैतान की पैरवी ना करना। पैरवी किसकी करनी चाहिए, लीडर और रहनुमा की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पे चलना जो है, इसी में मेरे और आपके लिए खैरियत है ना। बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी जो है वो बेहतरीन उस्वा है। जितने पैगंबर गुजरे वो मेरे और आपके लिए रोल मॉडल है ना। लेकिन अफसोस के अमल की जब बारी आती है तो ये फिल्मी एक्टर, ये खिलाड़ी, ये मॉडलिंग करने वाली औरतें, ये मैगजीन पर, रसालों पर, फ्लायर पर जो तस्वीरें होती हैं, तो या नावलों में जो किरदार पढ़ते हैं बच्चे या बड़े, तो सोचते हैं कि हम उसी को जो है ना उसको फॉलो करें, उसी की अताअत करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान, शैतान के कदमों पर नहीं चलना, और जिन्नों में से भी शैतान है और इंसानों में से, मिनल जिन्नति वन नास, क्योंकि शैतान के जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो बुराइयों पर आमादा करते हैं और हमेशा बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं। और बहुत बड़ा फितना है इस वक्त, और वो फितना क्या है कि उरियानी और फुहाशी, उसका एक रेला है, उसका एक सैलाब है, और उसके नतीजे में हम सबके घर मुतासिर हो रहे हैं। आप देखें, एक जमाना था कि ड्रामा बाप और बेटियां इकट्ठा बैठ के, भाइयों के साथ बहनें बेटियां ड्रामा नहीं देखती थी, और उस जमाने के ड्रामे फिर भी कुछ सिखाते थे। लेकिन अब हालात क्या है कि सब कुछ एक ही घर में सब बैठकर जो है वो देख रहे होते हैं। वैसे तो अपना वक्त जाया करना, आपको पता ही है कि लहव जो है, हर वो चीज जो हमें हमारे मकसद जिंदगी से गाफिल कर दे वो लहव है ना, लाहियतन कुलूबहुम, तो उनके दिल जो है वो गाफिल हो जाते हैं। तो अब इस वक्त हालात क्या है कि बुराइयां करना और नेकी जो है उसे दूर होते चले जाना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि शैतान जो है वो हमें बुराइयों पर आमादा करता है। तो मुसलमानों को नसीहत की जा रही है कि तुम ये काम जो है वो ना करना। वमन यत्तबि खुतुवात शैतानी, और जो कोई शैतान की पैरवी करेगा, वमन यत्तबि, और जो कोई, बेशक वो ईमान लाने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो शैतान की पैरवी करेगा, किसकी खुतुवात शैतान, जो शैतान ने राहें सुझाई हैं, जैसे चुस्त लिबास पहनना, टाइट लिबास पहनना, जैसे एक औरत जो है वो लड़की की शादी हुई और वो कह रही थी कि मैं चुस्त कपड़े, टाइट कपड़े बहुत पहनती हूँ और मेरे शोहर को ये पसंद नहीं है ना, और घर में इस बात पर अब लड़ाई हो रही है। तो अब आप ये बात बताएं कि वो औरत नंगी है अगर वो लिबास पहनती है और लिबास उसका बारीक है, या वो इतना टाइट है कि उसके जिस्म का अंग अंग, उसका एक एक उजू नुमाया प्रोमिनेंट होकर नजर आता है, तो फिर वो औरत लिबास पहन कर भी जो है वो नंगी की नंगी है ना, और लानत है फिर ऐसी औरतों पर और ऐसे फैशन पे। तो हया की ज्याती खैर लाती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें झूठी नहीं हो सकती, उसमें यकीनन मेरे और आपके लिए भलाई है। बेशक औरतों की महफिलें क्यों ना हो, इतना बेबाक नहीं होना चाहिए हमें। तो शैतान के कदमों की पैरवी ना करें, कोई भी ऐसा फैशन जो हमारे असल मकसद जिंदगी से हमें दूर करने लगे, गाफिल करने लगे। वो लिबास का इंतखाब, वो एक वक्त था औरतें कपड़ा खरीदने जाती तो कहती थी ये बहुत बारीक है, हमने ये नहीं लेना। और मुझे खुद अच्छी तरह याद है, हमारे घर में लॉन के नीचे जो है वो और कपड़ा लगता था, और कहते थे कि नहीं ये वायल ले लेंगे, ये जरा मोटी है, लॉन बहुत ही बारीक है, जिस्म नजर आता है ना। फिर दौर बदला, दौर और गुजरा, तो नतीजा क्या निकलने लगा कि अब औरतें जाके ये देखती ही नहीं कि जो है वो, हम लोग ये देखते ही नहीं कि कपड़ा बारीक कितना है, जॉर्जेट है, शिफोन है, लॉन है, वो इतना बारीक है, हम उसके साथ ही खरीद लेते हैं और सूट बना लेते हैं ना। और अगर आप दुकानदारों के पास जाएं और आप उनको ये कहें कि हमें ये नहीं लेना, ये बहुत बारीक है, तो लोग, दुकानदार भी ये देखते हैं कि इस वक्त जो है वो लोगों की डिमांड क्या है, और वो उस डिमांड को अपने जहन में रखकर चीज जो है ना वो ऑर्डर देते हैं ना। तो अब आप देखें कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो हालात में एक चेंज है, जो ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया, तो उसमें मेरे और आपके घर भी इस चीज से महफूज नहीं है। तो उसके लिए मुझे और आपको एक हिसार बनना है, ईमान की मजबूत दीवार बनना है, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, और तमाम मुसलमानों को ये बेहयाई और उरियानी और फहाशी का जो रेला चल रहा है उससे जो है हमें महफूज करना है, बचाना है। और अल्लाह ताला एक तरफ ये कहते हैं कि शैतान के कदमों पर ना चलना, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो इसके कदमों पर चलेगा, जो इसकी पैरवी करेगा, जो इसका कहना मानेगा, फिर उसका हशर क्या होगा, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, तो वो उसे फोश और बदी का हुक्म देगा। कि शैतान जो है वो दो कामों का हुक्म देता है, और वो दो काम जो हैं वो क्या हैं कि एक है फोहश और दूसरा है बेहयाई। तो शैतान तो चाहता ही ये है कि लोग जो हैं वो बेहयाई के काम करें, बुराई के काम करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो समझा रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा ईमान लाने वाले उनका क्या फर्ज बनता है, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि शैतान के फितने में बह ना जाएं। और शैतान जो है कभी इज्जत के नाम पर, कभी आजादी के नाम पर, कभी तरक्की के नाम पर, कभी हुकूक के नाम पर जो है वो बुराइयों का हुक्म देता है, और इस तरह से उसको बनाकर पेश करता है कि लोग जो है वो उसके रास्ते पर उसके बताए हुए जो तरीके होते हैं, जो फैशन होते हैं, उसको जो है वो अपनाते चले जाते हैं। और यहाँ पर फिर मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस बात पर जो है वो गौर करें कि जब वो हमें हुक्म देता है बुराई का, तो फिर हम उसका कहना क्यों मानते हैं ना। क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी कमजोरी क्या है कि फवाहिश और बेहयाई इतनी कसरत से हो गई है कि अब हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, कि हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और नजरअंदाज करने का नतीजा क्या निकल रहा है कि हम सब जो हैं उस फितने की रो में जो है वो बहते चले जा रहे हैं। और शैतान का वार इतना जबरदस्त और इतना भरपूर होता है, ऐसा जैसे कि हुक्मियां, कि इसके बगैर फिर अब बच ही नहीं सकते। और हम उसको उसके काम को हुक्म का दर्जा रखते हैं। आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि शैतान तो नजर भी नहीं आता, फिर हुक्म कैसे देता है। असल में वो वसवास है, वो खन्नास है, वो वसवसा डालता है, डालता रहता है। और जैसे कतरा कतरा पानी का भी गिरे तो नतीजा क्या निकलता है कि उसमें सुराख हो जाता है जगह में ना। तो जब कतरा कतरा करके, बूंद बूंद करके जो है वो गिरता है और मुसलसल वो एक बुराई के ख्याल को हमारे सामने लाता है, तो नतीजा क्या निकलता है कि इंसान बुराई को कहता है कि इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं जी नहीं सकती। औरत कहती है ना कि ये फैशन मैं ना करूं तो मेरा गुजारा ही नहीं है। और मैं आपको ताजा तरीन दो मिसालें बताती हूँ जो कहीं और की हैं, कि एक औरत जो है वो स्कूल में जॉब कर रही थी और उसकी तलाक हो चुकी थी, और जो भी प्रिंसिपल था वो मर था। तो टीचर थी वो, तो मेल जोल बातचीत, फिर यहां तक कि वो उससे मोहब्बत करने लगी। और फिर ये कि वो कहती थी मैं बचूंगी नहीं अगर मेरी उसके साथ शादी ना कर दें। और फिर उसकी वहां पे शादी भी हुई, फिर दोबारा तलाक भी हो गई। तो बेहिजाबाना मिलना जुलना, ये मर्द और औरत जो आपस में हदों के बगैर जब मिलते हैं और मिलते चले जाते हैं तो हदें टूटने लगती हैं। एक और वाकया बिल्कुल यानी सच्चा कि वो मेरे पास भी ये केस आया था, और उसमें क्या था कि इसी तरह मर्द ने एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया और बीवी उसकी बड़ी खूबसूरत, बच्चे भी चार पांच बच्चे, बड़े खूबसूरत बच्चे, तो दरसों में उसकी बीवी आती भी थी। और फिर वो जो उसने हेड टीचर रखी ना उस आदमी ने, उसको फिर एयरपोर्ट लेना, फिर उसको छोड़ना, फिर उससे बातें, फिर नाश्ता भी स्कूल में होने लगा। और फिर ये कि यानी बच्चे तक जो थे वो महसूस करते थे कि हमारे अब्बा जान जो है वो क्या कर रहे हैं। और फिर उस घर की भी जो है वो ईंट से ईंट बज गई। हदें टूटती हैं ना, यानी बेहिजाबाना जो इख्तलात है, जब हदों के अंदर हम नहीं रहते। असल में इसमें मैं एक बात आपको बताऊं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, मैं और आप भी, हम सबको अल्लाह ताला की ना हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वक्त के पैगंबर थे, और आप देखें कि जब वो जो है वो अजीज मिस्र की बीवी उनको बुराई पर आमादा करती है और वो चाहती है कि बुराई जो है वो करें, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या कहते हैं, मैं उबर रियुल नफ्सी, मैं अपने नफ्स की जो है वो पाकीजगी नहीं बयान करता, इन नफ्स लअमारतुम बिस्सू इल्ला मा रहमा रब्बी इन रब्बी गफूरुर रहीम। बेशक नफ्स तो बुराई पर अमादा ही करने वाला है, नफ्स तो बुराई पर उभारने ही वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा रब पालने वाला और बख्शीश करने वाला है। तो आप देख लीजिए इससे क्या बात पता चलती है कि माहौल हालात किसी का बहलाना फुसलाना तो इंसान जो है वो बुराई की तरफ आमादा होने लगता है अगर अल्लाह ना बचा ले इंसान को। तो मुझे और आपको भी हर वक्त जो है वो अल्लाह की पनाह में आना चाहिए और अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं मांगनी चाहिए कि हम लोग जो है वो किस तरह अपने आप को जो है वो बुराइयों से बचाएं। तो कभी भी हदों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और आपको पता है कि एक अकेला मर्द और औरत जब होते हैं तो तीसरा फिर बीच में शैतान होता है, तो इससे जो है वो बचना चाहिए। और यहाँ पे भी यही बात है कि वमन यत्तबे खुतुवाति शैतानि फइन्नहु यामुरु बिल फहशाई वल मुनकर, और जो कोई इसकी पैरवी करेगा तो वो उसे फोश और बदीही का हुक्म देगा। और फोश से मुराद बुराई के मुख्तलिफ तरीके और मुनकर से मुराद जो है वो क्या है, गुनाह बुराइयां। तो फिर आगे ही आगे बात जो है वो चलती चली जाती है। और हाल ही में एक और वाकया जो सामने आया, क्योंकि ये जो सेल है जो मोबाइल फोन है और इंटरनेट है और ये मीडिया और अखबारात रसायल और नावल, इससे और ज्यादा बुराइयां बड़ी आम हो गई हैं। और उसमें एक जो मसला सामने आया उसमें क्या था कि कोई किसी का रिश्तेदार था, शादीशुदा था और वो घर में आता था, बच्चे भी थे, और घर वालों को जैसे यकीन ही नहीं हो सकता, जैसे औरत का समझ ले भतीजा था या फिर मर्द का भतीजा था, कोई रिश्तेदार था। और उसके बाद उनकी बेटी उसके साथ जो है वो मुलव्वस हो गई और वो सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपना रिश्तेदार था, जैसे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ना शादीशुदा बच्चों वाला, तो चलो मिल रहे हैं आ रहे हैं देख रहे हैं जा रहे हैं कोई नहीं इतना मसला, बाजू का होता है ना कि ये हमारे मतलब वो तो शादीशुदा है ना, तो लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि कब शैतान कहां पे किस तरह जो है वो आग लगा देता है। अल्लाह ताला से बहुत दुआ करें और उसके साथ साथ अल्लाह की हदों को, अल्लाह अल्लाह के कानून को अपने हाथ में ना लें, ये बहुत अहम बात है। और हया की ज्यादती खैर लाती है, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मत भूलो इस बात को कि शैतान बेहयाई का हुक्म देता है, फोहश नाफरमानी का, और साथ ही बदी का गुनाह का हुक्म देता है। فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی شخص پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان چونکہ برائیوں میں آلودہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان نجاستوں کے اندر لتھڑا رہے، اس کے اندر ہی آلودہ رہے۔ تو क्या बात पता चलती है कि ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल से यहाँ पे क्या मुराद है, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत, तो इसका मतलब है कि नेकी और बदी में तमीज, दीन का शऊर। और अगर अल्लाह का फजल यानी अगर अल्लाह तुम्हें दीन का शऊर ना देता, हक और बातिल में फर्क ना देता, अगर अल्लाह ताला तुम्हें ये ना बताता कि हया क्या है, बेहयाई क्या है, इस्लाम क्या है और बेदीनी क्या है, तो फिर नतीजा क्या निकलता, मा जका मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई शख्स पाक ही नहीं हो सकता था। तो जो खास बात हमारे सामने फिर यहाँ पर आती है वो क्या है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये मेरा तुम पर एहसान है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मामले में दुश्मनों ने जो अफवाह उड़ाई थी और हर शख्स बगैर किसी नकीर के उसको कबूल करता जा रहा था। नकीर का क्या मतलब है, एक दफा एक बच्ची जो है उसकी तलाक जब हुई तो लड़की के घर वालों ने ये कहा कि लड़का ठीक नहीं था, मतलब लड़का ठीक नहीं से मुराद उसका ये था कि लड़का जो है वो उसके अंदर मर्दानगी थी नहीं ना, तो बहर हमें तो कुछ नहीं पता था, हम क्या कह सकते हैं, एक बात आप कह रहे हैं तो वसूख से ही कह रहे होंगे। फिर थोड़े अरसे बाद ये हुआ के लड़के वालों ने ना, लड़के के वालदैन ने लड़के की शादी की और उसको फिर अल्लाह ने औलाद दी और उसके कई बच्चे, और अब आप देखेंगे दोनों बातों में कितना तजाद है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है, कभी किसी के बारे में, चलो लड़की लड़के की किसी वजह से अगर नहीं भी बनी, और हो सकता है ये बात भी हो और हो सकता है ये बात ना हो, अगर तो हमेशा इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि किस्मत नसीब होते हैं, कभी कोई बात किसी की आपस में नहीं बनी, लेकिन जो इतनी तलाकें हो रही हैं और होती हैं, तो उसमें लड़की वाले लड़के पर कोई भी गलत इल्जाम ना लगाए और लड़के वाले लड़की पर कोई गलत इल्जाम ना लगाए, है ना। तो इस तरह से अगले को छूत बनाकर रख देना, या लड़के वाले लड़की को इतना बदनाम कर देते हैं कि लड़की का फिर कहीं रिश्ता ही ना हो, मंगनी टूटती है तो हमारे मिजाज में भी तो कई कमी हो सकती है, कोई हमारी गलती भी तो हो सकती है ना। तो कोशिश यह करनी चाहिए कि चुप रहें, और मर्दों की और औरतों की आम सोसाइटी की भी आदत होती है कुरेद कुरेद कर, फिर क्यों नहीं हुआ, फिर क्या हुई, क्या वजह हुई, नतीजा निकलता है कोई ना कोई बात, कोई ना कोई बात, फिर जबानें उसको लेती चली जाती हैं। तो ऐसे मौके पर नकीर का मतलब क्या है कि बातों को उसी तरह कबूल ना करना और उसको आगे ही आगे जो है ना फैलाना नहीं। हर शख्स इस बात को याद रखे कि जिस शख्स को भी कोई पाकी या पाकीजगी हासिल है, नेकी और प्योरिटी हासिल है, तो महज अल्लाह के फजल से है। अगर अल्लाह की तौफीक शामले हाल ना हो तो कोई पाक नहीं हो सकता। किसी को भी अपने तकवा का, अपने तजकिया का जो है वो गर्रा नहीं करना चाहिए, उसको उसको ना गुरूर नहीं करना चाहिए। वो दूसरों के मामले में हर किस्म की बेतहकीक बातें फैलाए नहीं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती। और ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। जैसे बाज लोग हुस्ने जन रखते हैं, बाज औकात बाज लोग जो है वो किसी की भी फैलाई हुई बात को आगे नहीं फैलाते, या बाज औकात बाज लोग जो है वो बदी को पहचान कर नेकी को कबूल करते हैं और बदी को हाथों हाथ आगे नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर तुम्हें नेकी की तमीज दी, तुम्हें सूझबूझ दी, कि तुम लोग जो थे उम्मत मुस्लिमा पर जब इतना बड़ा फितना हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर वाकया इफ्क का आया, तो अल्लाह ने क्या फजल किया कि पाक कर दिया। पाक कैसे हुए लोग, तो कोई शख्स पाक ही नहीं हो सकता था। कि कुछ लोगों पर हद लग गई और आम उम्मत मुस्लिमा के जो लोग थे उनमें ऐसे भी थे कि जैसे जो है वो हजरत अबू अयूब अंसारी और उनकी बीवी, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। फिर लौंडी कनीज गुलाम जो थे उन्होंने अच्छी गवाहियां दी। फिर इसी तरह हमें जो है वो हजरत जैनब के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ये गवाही कि वो कहती हैं हजरत आयशा कि मेरा जैनब से मुकाबला रहता था हमेशा, लेकिन जब हजरत जैनब से रसूल अल्लाह ने मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि खुदा की कसम मैं इसके अंदर भलाई के सिवा और कुछ नहीं पाती ना। तो अच्छी गवाहियां देना दुश्मन के खिलाफ भी, कोई बहुत ही बुरा हो तो उसके भी खिलाफ भी, है ना। तो ये अहले ईमान का जो बेहतरीन तर्ज अमल था तो ये क्या था, ये अल्लाह का फजल था और अल्लाह का रहम था। और हम आपसे और मुझसे भी अमली जिंदगी में, दुनिया की छोटी सी जिंदगी में जो छोटी मोटी कोई नेकी अगर हो जाती है ना, तो कभी आप ये ना कहा करें, या मैं कभी ये बात ना कहा करूं कि देखो फिर मैं थी ये जिसने ये काम किया, कोई और होती तो फिर करके दिखाती, है ना, मैं ही थी जिसने ये गुजारा किया। अच्छा, बाज लोगों के बच्चे नेक हैं, और जिनके भी बच्चे नेक हैं ना, वो कभी इस गुरूर में मुबतला ना हो कि ये हम हैं जो उन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, तो सीना फुला फुला के और सीना तान तान के और बातों ही बातों में अपने बच्चों की तारीफ करना। बाज औरतें अपनी बेटियों की बहुत तारीफ करती हैं कि हमने बड़ी अच्छी उनकी तरबियत की, और बाज अपने बेटों की तारीफ करती हैं कि हमने बड़ी अच्छी अपने बेटों की तारीफ की। ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है। कौन से माँ बाप है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो बुराइयां करें, कौन से माँ बाप है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहया हो जाएं, कौन से माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो हदों को क्रॉस करने लग जाएं? कोई माँ नहीं चाहती, कोई बाप नहीं चाहता। कि बड़े से बड़ा डाकू भी होता है ना, बड़ा सा बड़ा जो है वो जानी भी होता है ना, वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी ये गलती और ये गुनाह जो है वो ना करे जो मैंने कर लिया ना, वो और ज्यादा मेहनत मशक्कत करता है। तो असल बात यही है कि ये सब हम पर अल्लाह का एहसान है कि जिनके घर बचे हुए हैं, जिनके बच्चे बचे हुए हैं, जो लोग खुद बचे हुए हैं और सोसाइटी में जो मुसलमान बचे हैं, वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू। तो यहाँ पे अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं कि नेकी के मामले में कभी अपने अपने तकवा और तस्किया पर जो है ना गुरूर ना करना। ये सिर्फ अल्लाह का फजल है और अल्लाह की रहमत है कि तुम बुराइयों से जो है वो बच जाते हो। मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, और आपको पता है ना ज़का का क्या मतलब है, पाक करना, संवारना। आपने ये भी पढ़ा था ना, कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद ख्वाब मन दस्साहा। तो जो है वो दस्सा का मतलब होता है दबा देना, और तस्किया का मतलब क्या होता है कि नफ्स की जो बुराइयां हैं उसको दबाना और जो अच्छाइयां हैं उसको जो है वो संवारना, उसको परवरिश देना, उसको जो है वो प्योरीफाई करना, उसको नेकी के कामों में दिल लगे और बुराई की जो ख्वाहिशात हैं वो इंसान की दबनी शुरू हो जाए। तो ये जो नेकी और बदी में तमीज है ना, ये अल्लाह का एहसान है। और कोई शख्स भी पाक नहीं हो सकता था अगर अल्लाह ना चाहता। वलेकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है। और इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है? जो चाहते हैं कि हम पाक हों, अल्लाह फिर उनको पाक कर देता है। जो चाहते हैं हम मसाइल और बुराइयों और परेशानियों से बच जाएं, फिर अल्लाह भी उनको बचा देता है। आप देखिए, बाज लोग होते हैं वो इधर उधर की बातों में आना नहीं चाहते, वो फौरन टॉपिक चेंज करते हैं, वो अफवाहें, वो बगैर तहकीक के जो बातें निकलती हैं ना, वो सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम इस बात को नहीं मानते, और कोई बात करो। और बाज एक जब मैं छोटी थी तो हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी, उसका नाम था गल्ला वाली। हाँ, तो जब इन्हें इतनी समझ नहीं होती तो मुझे नहीं समझ आती थी कि इसका नाम ये अजीबो गरीब नाम क्यों है। तो बाद में पता चला वो औरत बहुत बातें करती थी, यहाँ के लोगों ने उसका नाम गल्ला वाली रख दिया था और उसको वाकई गल्ला वाली कह के पुकारते थे। गल्ला वाली आ गई, गल्ला वाली चली गई। तो और वो बेथकान बोलती थी और हरे के बारे में बोलती थी, उधर आया, कौन गया, क्या खाया, किधर से निकला, कहाँ पे गया, कौन कैसा है, और ऐसी थी वो औरत ना। तो गल्ला वाली सोसाइटी ने उसका नाम ही रख दिया ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अगर हम अपनी जबान की हिफाजत करें, अगर हम अफवाहें जो हैं उनको फैलाएं नहीं, अगर हम हर किस्म की बेतहकीक बातों को कबूल ना किया करें, हमारे दोस्तों को भी पता चल जाता है। और जो लोग इस तरह हर वक्त बातें करने वाले होते हैं, फिर वो आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। उनको लगता है कि ये तो सुनती ही नहीं है, तो बात ही नहीं करती, इसके पास मेरी इन फजूल कहानियों और लंबी दास्तानों के लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर वो जो है वो बात नहीं करती। क्योंकि दो दो चार करके तकवा जबान को एक लगाम दे देता है ना, फिर आप बातें नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे भी यही बात है कि अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह के फजल को कबूल करो, कि अल्लाह के फजल का एतराफ करो कि अल्लाह ने तुम्हें गुनाह से बचाया, और हमें इसका एतराफ करना चाहिए। अमली जिंदगी में अल्लाह मुझे और आपको गुनाहों से बचाता है। और दूसरी बात ये कि जो खैर चाहते हैं, जो अमले सवाले चाहते हैं, जो नेकी चाहते हैं, तो फिर अल्लाह भी उनके लिए खैर चाहता है। उनको शैतान के निर्गे में, शैतान के चुंगल में जो है वो उससे बचने की तौफीक देता है, और उनको जो है वो अमले सवाले की तौफीक देता है। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसका तज़किया करता है, उसको पाक करता है। तो अल्लाह का ज़ाबता ये है, जो खुद अपनी सीरत को पाक रखना चाहते हैं, जो अपने आप को नेक बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको पाकीज़ा रहने की तौफीक देता है। और वो अल्लाह साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। इसका मतलब यह है अल्लाह को खूब पता है कि कौन पाकीज़गी चाहता है और कौन नहीं चाहता। अल्लाह ताला को खूब ये बात जो है वो पता है कि कौन शख्स अपनी जात के मामले में जरूरत से ज्यादा हुस्न ज़न में मुब्तिला होता है और दूसरों के मामले में वो बदगुमानी में मुब्तिला रहता है। तो लोगों, इस बात को मत भूलो कि अल्लाह समी और अलीम है। गोया के हर मख्फी से मख्फी बात, हर पोशीदा से पोशीदा बात जो है वो अल्लाह ताला के इल्म में है और अल्लाह उसको जानता है। वल्लाहु समीउन अलीम। इसका यहाँ पे समीउन अलीम का खास तौर पे जिक्र क्यों किया गया कि जब अब्दुल्ला बिन उबई ने बात को निकाला था, अल्लाह सुन रहा था ना, अलीम अल्लाह जानता था कि बीबी आयशा से कोई गलती नहीं हुई, हजरत सफान से कोई गलती नहीं हुई, उसको खूब इल्म था। और फिर उम्मत मुस्लिमा में लोगों से किस किस से कितनी कितनी गलती हुई, लोगों ने कैसे बातों को आगे आगे फैलाया। तो आम जिंदगी में भी अल्लाह ताला की ये सिफात जो है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला को खूब पता है कि किस शख्स का किरदार कैसा है और वो कैसी बातें करता है। वल्लाहु समीउन अलीम। वला यातलि उलुल फज्ल मिनकुम वस्साति, वला यातलि, और कसम ना खा बैठें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कह रहे हैं, और कसम ना खाया करें। वला यातलि उलुल फजली, उलुल फजली तुम में से फजल वाले, साहिबे फजल, मिनकुम तुम में से, वसाती और कुशादगी वाले, अय्यू तू के वो देंगे, اولیل قربا رشتہ داروں کو والمساکینہ اور مسکینوں کو والمہاجرینہ اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ولا یا تلی اور قسم نہ کھائیں. آپ کو پتہ ہی ہے الف لام واو اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے کوئی اچھا کام پورا نہ کرنے کی قسم کھانا. اس میں دو معنی خاص طور پہ پائے جاتے ہیں اس لفظ میں الف لام واو میں, کہ کام میں کوتاہی اور دیر کرنا, اور نمبر دو جو ہے وہ قسم کھانا. تو اب آپ دیکھیں کہ ولا یا تلی اور قسم نہ کھائیں, قسم نہ کھائیں. اول الفضل منکم, تم میں سے جو امیر ہیں جو صاحب فضل ہیں جو دولت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں. وساتی اور وساتی کا روٹ بھی بہت سی نئے ہیں, وسعت کشادگی, جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اور جو صاحب فضل ہیں وہ قسم نہ کھائیں. این یو تو کس بات کی قسم نہیں کھانی؟ این یو تو کہ وہ نہیں دیں گے, یہ لا جو ہے نا یہاں پہ بھی آئے گا. این یو تو کہ وہ نہیں دیں گے, وہ پیسے خرچ نہیں کریں گے, وہ مدد نہیں کریں گے. کن لوگوں کی؟ نمبر ون اولی القربا رشتہ داروں کی, قرابت والے رشتہ دار, قریبی لوگ جو ہیں یعنی رشتہ دار. نمبر دو والمساکینہ اور مسکین جو غریب ضرورت مند ہے. والمہاجرین فی سبیل اللہ اور مہاجر فی سبیل اللہ کی مدد نہیں کریں گے. تو یہاں پر تین لوگوں کا ذکر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو صاحب فضل اور امیر لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ولیعفو کہ وہ انہیں معاف کر دینا چاہیے, ولیصفحو اور درگزر کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بخش دے تم کو, اللہ تمہاری مغفرت کر دے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی اپنی پہچان کیا ہے, اللہ کا تعارف کیا ہے, اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے اور بخاری مسلم ترمذی مسند احمد وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ عف سے متعلق جو طویل حدیث ملتی ہے اس میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکا بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے. جب انہوں نے واقعہ عف کے موقع سے جو ہے وہ اس طرح پردازوں کی ہاں میں ہاں ملائی, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسکا بن اساسہ جو ہیں وہ اس فتنے کی رو میں بہ گئے ہیں, جیسے حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اور لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے, تو حضرت مسکا بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے. اور پھر ہوا کیا کہ حضرت مسکا بن اساسہ چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور محتاج تھے, اولو القربہ میں بھی شامل ہوتے تھے, مساکین بھی تھے, ہے نا, غریب بھی تھے. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے کیا تھے کہ انہیں گزر اوقات کے لیے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے. تو جب یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے اس عمل سے, رویے سے بہت رنج پہنچا, اور رنج پہنچنا ایک فطری امر بھی تھا. تو ان کو افسوس کس بات کا تھا کہ بھلائی کا بدلہ اس نے برائی سے دیا, چنانچہ آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایسے احسان فراموش کی کبھی مدد نہ کریں گے. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی, انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ مسکا کی کفالت نہیں کریں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اور آپ دیکھیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عفو درگزر کی تلقین کی, اور کیا کہا؟ ولیعفو ولیصفحو کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اب آپ دیکھیں کہ عفو اور درگزر جو ہے اس کے کیا معنی ہیں. جو ولیعفو جو ہے اس کے ایک معنی تو یہ ہے نا کہ معاف کر دیا جائے, کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, کوئی اس نے زیادتی کی ہے, تو آپ بدلہ نہ لیں اور جو وہ سزا کا مستحق ہے آپ اس سزا کو چھوڑ دیں, اور وہ قصور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے, ہے نا. دوسرا لفظ یہاں پہ ولیصفحو استعمال ہوا ہے, سواد فا ہا, इसके मानी होते हैं जाने देना, किसी को उसके कसूर का एहसास भी ना होने देना, उससे बासपुरस भी ना करना। ये ना अप्पू का दूसरा दर्जा है। ये काम माफ करने से मुश्किल है ना। आप देखें कि जो अप्पू होता है ना, उसका मतलब होता है कि आप उसको सजा ना दें, जो उसको सजा देनी चाहिए थी आप उसको वो नहीं देते। लेकिन जो अस्पहा है ना, इसके मानी है कि तरके मलामत, आपके दिल में मैल भी नहीं होना चाहिए, आपके दिल में उसके बारे में बुरा ख्याल भी नहीं होना चाहिए। सूरत अल बकरा में भी आप ये बात पढ़ चुकी ना, आयत 109 में, फाफू वस्फहू हत्ता याती अल्लाहु बे अम्रे, सोने माफ कर दो और इनसे दरगुजर करो यहां तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म जो है वो भेजे। तो आप देखें कि मसलन कोई आपके साथ ज्याती करता है और उसने आपको जो है वो क्या किया कि आपके साथ, आपने उसके साथ बड़ा हुस्ने सलूक किया, लेकिन उसने आपके साथ ज्यादती की, हुस्ने सलूक का बदला जैसे हजरत मिस्ता बिन उसासा से गलती हो गई रजी अल्लाह हो, तो बदरी सहाबा में से थे ये, फिर भी उनसे ये गलती हो गई कि ये बहतान लगाने में साथ शामिल हो गए। तो अब आप देखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि उन्होंने जो इतनी बड़ी गलती की, इज्जत पर हमला, बेटी की इज्जत पर हमला, तो उन्हें माफ कर दे। अब सिर्फ इतना नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि वल याफू के माफ कर दे, बल्कि ये कि वल यस्फहू, और दिल में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि उससे ये गलती हुई है। बाज़ औक़ात आपको आपके यहाँ खुदा ना खास्ता कोई डेथ हुई है, तो आप किसी के यहाँ ताजियत के लिए गई, आप उसकी हर खुशी गमी में जाती हैं, लेकिन आपके यहाँ जब डेथ हुई तो उसने आपको नहीं पूछा, वो आपके यहाँ ताजियत के लिए नहीं आया, मैं नहीं आई, आपके रिश्तेदार हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि लो जी उसको इतना भी ख्याल नहीं कि मैं हर मौके पे उसके काम आई और मेरा जब मौका आया तो वो मेरे पास वो आई नहीं, है ना। और अब जो है वो बड़ी बनी फिरती है। तो इसमें जो है वो वलियाकू कह के चलो कोई बात नहीं वो नहीं आई, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि वो नहीं आई कोई बात नहीं, बल्कि क्या तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि वो नहीं आई। आप बताएं कि आप ऐसा कर सकती हैं कि इतना दरगुजर करें कि ख्याल भी ना आए कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। आप हमेशा किसी को राइट देती हैं, ठीक है। आपने एक दफा औरत ने मुझसे ये बात भी की कि मैं हमेशा उसको जो थी वो राइट देती थी, हर खुशी गमी बाहर खड़े होकर उसके दरवाजे पर रहकर, अब उसकी बेटी बेटा गाड़ी चलाने लग गए तो मुझे पूछती भी नहीं है। अब उसका मौका आया कि अब मुझे वो राइट दे, तो अब वो पूछती भी नहीं है, फोन उठाती नहीं है मेरा। देखें तो नेकी करना बड़ा आसान है, नेकी को संभालना बड़ा मुश्किल है। और एक ये कि चलो आप अपने दिल को कहते चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिलों में ख्याल आ जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा फिर क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करती। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए, दिल में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक तरफ तो ये है ना कि आप उसकी गुनाह और गलती को माफ कर दे, दूसरी तरफ वल यस्फहू में ये कहा जा रहा है कि तरके मलामत, मलामत भी नहीं करनी। तरके मलामत तो बड़ी आसान है ना, उसको थोड़ी पता चलता है जब हम तरके मलामत कर रहे होते हैं कि तो उसने मुझे दावत पे नहीं बुलाया, उसने मुझे राइड नहीं दी, वो मेरे बच्चों को पूछती नहीं है, मैं उसके हर खुशी गमी में हर मौके में मैं उसके काम आई। दिल में आते और बुड़बुड़ाते रहते हैं, कभी शोहर के सामने, कभी बच्चों के सामने, कभी किसी दोस्त के सामने, भले उसके सामने ना कहें लेकिन बातें हम कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अब जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो है ऐसे लोगों से फिर भी अफ़्वो दरगुजर करो, जो रिश्तेदार हैं, जो मस्कीन हैं, और जो मुहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले हैं। आप बताइए फिर दिल कितना बड़ा चाहिए, समंदर जितना बड़ा दिल में वुस्सत होनी चाहिए मेरे और आपके दिल में, समंदर जितनी वुस्सत। समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, दरिया और नाले सब आकर समंदर में गिरते हैं, है ना। तो समंदर बनना है, सूरज बनना है, सूरज किसी से रोशनी नहीं लेता, चांद भी मेरा और आपका चांद जो है ना वो भी सूरज से रोशनी लेता है, सूरज की रोशनी की तरह बन जाइए जो सबको रोशनी देता है लेता नहीं है, वो समंदर बन जाइए जो किसी में नहीं गिरता लेकिन सब उसमें आकर जो है वो गिरते हैं, और सबको अपने अंदर समेटता चला जाता है, सबको पानी देता है। तो यहाँ पे भी बात है कि जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है तो वो क्या करें कि वो कभी ये बात ना सोचें कि कि उसने रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया, उसने एहसानात की कुछ शर्म नहीं की, सारी उम्र इसके खानदान पर इतने एहसान, इसको जरा ख्याल नहीं हुआ। आप सोचिए, मैं तो अक्सर इस आयत पे सोचती हूँ तो मेरा दिल जो है ना वो डरने लगता है, बहुत कपकपी सी आने लगती है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, जिनके बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैंने सबकी नेकी का बदला दुनिया में दे दिया सिवाय अबू बकर के, जिनके बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मस्जिद नबी में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए। आपको पता ना, शुरू शुरू में ऐसा था कि मस्जिद नबी में सहाबा अपने घर का दरवाजा खोलते थे और मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो जाते थे, यानी उनका दरवाजा मस्जिद नबी के सेन में खुलता था। फिर एक मौका ऐसा आया कि मस्जिद नबी बड़ी होती गई और आपने सहाबा से कहा कि अब इस तरफ दरवाजे सब बंद कर लें, मस्जिद नबी में कोई दाखिल नहीं हो सकता, खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लें, दूसरी तरफ अपना रुख निकालें। कहा कि अबू बकर का की जो खिड़की या दरवाजा है ना उसको ना बंद किया जाए, बाकी सबका बंद कर लिया जाए। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के बारे में उमर फारूक रजी अल्लाह सारी जिंदगी उनका मुकाबला करते रहे, सारी जिंदगी, और चाहते थे कि किसी तरह नेकियों में मैं भी आगे निकलूं, कभी कभी तो अबू बकर पे मैं भी फौकियत ले जाऊं या नेकियों की दौड़ में उससे आगे निकल जाऊं, और कभी वो आगे ना निकल सके। और एक मौके पर वो ये कहने लगे कि वो रात जो आपने जो है वो हिजरत के सफर में रसूल अल्लाह के साथ गुजारी थी, मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लें अबू बकर, मुझे वो रात दे देना, कभी मैं और आप भी नेकियों में मुकाबला करते हैं, और अगर आप करते हैं तो शिकवे शिकायतें ही करते रहते हैं, उसको ये दे दिया, उससे ये ले लिया। मैं कहती हूँ दूर क्या जाना, सगी बेटियां सगी बहनें माँ बाप से लड़ती रहती हैं कि आप अम्मी उसको तो बहुत फोन करती हैं, मुझे तो फोन ही नहीं करती, उसको तो आप बहुत देती हैं मुझे तो नहीं देती, उसकी तो आप हमायत ही करती रहती हैं मुझे तो आप पूछती ही नहीं है। पिछले दिनों एक औरत बहुत इस बात पर शिकवा कर रही थी कि मेरे माँ बाप जो है वो पूछते ही नहीं है मुझे, ख्याल ही नहीं करते मेरा ना। तो असल बात है कि हमारी ना आदत हो गई है शिकवे शिकायतें करना, कभी शोहर का, कभी माँ बाप का, कभी बहन भाइयों का, कभी दोस्तों का, कभी हमसायों का। आइए आज से एक नई जिंदगी की इब्तदा करते हैं, और वो जिंदगी क्या है जिसमें शिकवे शिकायतों की जगह ये देखने की बजाय कि दूसरे मेरे साथ क्या करते हैं, बेशक मेरी और आपकी औलाद ही सगी क्यों ना हो, शोहर औलाद माँ बाप बहन भाई दोस्त अहबाब ये मत देखें, इस नुक्ते नजर को छोड़ दें कि वो मेरे साथ क्या करते हैं, ये देखें मैं उनके साथ क्या करती हूँ। उनके अमलों का जवाबदेही अल्लाह उनसे करेगा ना। तो असल बात यह है कि हकूक की बजाय फराइज जो है ना उसकी फिक्र करने शुरू करते हैं। अब आप देखें, मैं सोचती हूँ उस बात पे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का तो इतना खूबसूरत अमल था, इतना अच्छा अमल था, और आपका जो दिल का अफसुरदा होना और आपका गुस्से में आकर कसम खाना कि आइंदा वो मिस्ता को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे रजी अल्लाह अन्हुमा, तो ये इंसानी फितरत के मुताबिक था, कोई गलती तो नहीं लगती हमें बजाहिर, कोई लगती है आपको गलती कि मुसलसल उनकी खिदमत कर रहे हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये रवैया उनकी सदीकियत के मकाम से फरोतर था। सदीकियत का जो बुलंद तर किरदार है सिद्दीक है ना, उससे ये फरोतर था। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, और आपको पता है ये बात, अल्लाह जिन लोगों से मोहब्बत करता है जिनसे प्यार करता है ना उनकी जरा सी गलती भी अल्लाह को पसंद नहीं आती, अल्लाह ताला उनको मांझ कर बना सवार कर जो है वो रखना चाहता है। तो ये आयत अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी, वला यातली उलुल फजल मिनकुम वसअति अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। कि ये आयत जब नाजिल की अल्लाह ताला ने तो बड़े प्यार के साथ आपने जो जो बशरी गलती हुई थी ना, आजिलाना उजलत, इंसान बड़ा जल्दबाज वाक्या हुआ है, तो इस आजिलाना बशरी गलती पर ना सिर्फ मतनबे किया और अल्लाह ताला ने बल्कि क्या कहा, वलियाफू वलियस्फहू, कि तुम माफ भी कर दो दरगुजर भी करो। और साथ ही अल्लाह ताला ये जो आयत का आखिरी हिस्सा है उसमें क्या बात बताते हैं कि तुम भूल गए कि अल्लाह का किरदार क्या है, अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह का किरदार तो क्या है कि अल्लाह भी तो तुम्हारी गलतियां माफ करता रहता है ना, जिस तरह अल्लाह तुम्हारी गलतियां माफ करता रहता है तुम भी दूसरों के कसूर इसी तरह माफ किया करो और दरगुजर का मामला किया करो। फिर अल्लाह ने सवालिया अंदाज में पूछा, अला तुहिब्बूना, क्या तुम पसंद नहीं करते अई या फिर अल्लाह लकुम कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हारी गलती जो है वो उसको माफ कर दे। तो मिस्सा बिन उसासा रजी अल्लाह नो जो थे उनसे अफवाहों की बिना पर जो उनके दिल में भी बदगुमानी पैदा हो गई, उनको हुस्ने ज़न करना चाहिए था, बस उनसे एक गलती हो गई। तो अबू बकर तूने अपनी सरपरस्ती से उनको क्यों महरूम कर दिया, तुम अपने आप को गलतियों से मुबर्रा क्यों समझते हो? तो आदमी को अपने दिल में थोड़ा सा ख्याल भी नहीं लाना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप देखें कि एक गलती हजरत मिस्सा से हुई तो दूसरी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से हुई, और अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी, अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम। और कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई इसे सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने बेसाख्ता पुकारा कि क्या कहा, बला वल्लाहु अना नुहिब्बु अन तग़फिर लना या रब्बिना, बला हाँ क्यों नहीं, वल्लाहु वल्लाह अल्लाह की कसम मैं जरूर ये चाहता हूँ कि अल्लाह आप मेरी खताएं माफ कर दीजिए, अना नुहिब्बु अन तग़फिर लना या रब्बिना, क्या मेरे रब आप मुझे बख्श दे। आप बताएं मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि हमसे जब गलती होती है और हमारा हमारे माँ बाप हमारे बड़े हमारे उस्ताद हमारे बुजुर्ग हमें जब समझाते हैं कि देखो तुमने ये गलती की है, उसकी भी गलती है लेकिन वो कि उसकी बड़ी गलती है तुम्हारी भी गलती है तुम इससे ऐसा ना करो, तो आप कहते नहीं नहीं मैं कैसे भूल जाऊं, नहीं मैंने इतनी नेकियां की सारी जिंदगी मैं चुप करके रही। आप तो चाहते हैं मैं चुप कर रोजा ही रख लूं, आप तो चाहते हैं कि मैं बस अपने आप को खत्म ही कर दूं, आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं है, आपको तो मेरी छोटी सी गलती भी छतीर बनकर नजर आती है और दूसरों की गलती नजर नहीं आती। हम बजाय इसके अच्छा कितने मौके हैं कि मैं और आप फौरन पुकार उठें कि बला वल्लाहु अना नुहिब्बु अन तग़फिर लना या रब्बिना, कि अल्लाह मैं ये चाहती हूँ कि तू मुझे माफ कर दे। मोमिनाना किरदार क्या होता है, गलतियां इंसान है हो जाती हैं, मैं और आप हैं और हम खताओं की पोटली हैं पुतली हैं, हमसे बहुत गुनाह हो सकते हैं और हो जाते हैं, लेकिन गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं है, गुनाह करके फिर इसरार करना उसमें जम जाना फिर अपनी इसलाह ना करना दूसरों की गलतियों को माफ ना करना, ये है असल ज्यादती मेरी और आपकी। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम क्या था, ये नहीं कहा कि नहीं मुझे मौका चाहिए मुझे सोचने दें, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लम्हा भर की ताखीर के बगैर फौरन पुकार उठे कि खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। और जितने सहाबा थे पता है उनका किरदार क्या था, उधर आयत नाजिल होती थी उधर वो सरापा अमल बन जाते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का गुस्सा बड़ा मशहूर है, उनकी जफाकशी सख्ती मजबूती बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि कुरान की आयत उनके सामने तिलावत की जाती थी उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता था, बिल्कुल दोबारा उफ नहीं करते थे, कहते थे कि हाँ जैसे मेरा अल्लाह ताला चाहता है ना बिल्कुल वैसे। लेकिन मेरी तो आपकी मैं ही खत्म नहीं होती ना, मैंने कोई धूप में बाल सफेद किए मुझे आपने वैसे ही समझा हुआ है, बस ये शैतान है जो मुझे और आपको जो है ना वो बुराइयों पर उकसाता है बुराइयां करवाता है फिर उसके बाद फिर हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि अल्लाह की सिफात का अक्स जो है ना मेरी और आपकी जात में नजर आना चाहिए, वो रहम करने वाला है हम भी रहम करें, वो गुनाहों को माफ करता है दिन और रात। कितने गुनाह आपके ऐसे हैं मुझे और आपको पता भी नहीं होता कि मैंने और आपने ये गुनाह किया है और अल्लाह ताला माफ कर देते हैं ना, और मैं और आप दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते, बड़े नेक समझते हैं आप अपने आप को बड़ा पाक और मुबर्रा समझते हैं बुराइयों से। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने कसम खाई बेसाख्ता पुकार उठे क्यों नहीं है हमारे रब हम जरूर ये चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दें, काश कि मेरे और आपके अंदर अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक और सहाबा कराम रजी अल्लाह उन्हों के किरदार की कोई झलक तो नजर आए कोई रंग तो उसका नजर आए कोई परतो तो उसका नजर आए ना। फिर उन्होंने अपनी कसम का कफारा अदा किया, नंबर दो है गलती का एहसास अल्लाह को कहा अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, नंबर दो उन्होंने अपनी गलती का कफारा अदा किया, नंबर तीन कहते हैं कि उन्होंने हसबे साबिक मिस्सा बिन उसासा की जो है वो मदद करनी शुरू कर दी, और बाद मुफस्सरीन तो ये कहते हैं कि उन्होंने पहले से भी ज्यादा मदद करनी शुरू कर दी, जितनी पहले कर रहे थे ना तो कफारे के तौर पर कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि मदद नहीं करनी, तो कहते हैं कि पहले से भी ज्यादा जो थी वो मदद करने लगे और वादा किया कि मैं मदद जो है वो करता रहूंगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे और आपकी अमली जिंदगी के लिए आयत नंबर 22 बड़ा खूबसूरत उसूल देती है, और वो उसूल ये है कि माफ इसलिए करना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ कर दे। ये उसूल है और एक बहुत बड़ा बुलंद उसूल है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए। माफ करते वक्त कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है, बल्कि इसलिए माफ करना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ कर दे। और ये एक ऐसी जरूरत है जिसकी हर वक्त मुझे और आपको जो है ना वो जरूरत है। तो ये है अहम बात। और फिर अगर हमने कोई कसम भी क्यों ना खा ली हो तो कसम को तोड़ देना चाहिए, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने कसम को तोड़ा। अच्छा, कसम को तोड़ना इसका कफारा क्या है, इसके बारे में दो राय हैं। और एक राय तो ये है कि अगर कोई शख्स जो है अच्छे काम को इख्तियार कर ले तो यही कसम का कफारा है। अच्छे काम को, गलत काम की अब कसम खा ली कि मदद नहीं करनी है ना, तो अच्छे काम को इख्तियार कर लेना ही इसका कफारा है। लेकिन ये कुछ उलमा का ख्याल है। जो दूसरे उलमा हैं उनका ख्याल है कि सूरत मायदा में कसमों के कफारा का चूंकि हुक्म नाजिल हो चुका तो कसम का कफारा अदा करना जरूरी है। और वो दलील में हदीस भी पेश करते हैं बुखारी की ये वाली कि हजरत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि मैं तो अल्लाह की कसम जो अल्लाह चाहे जब किसी बात पर कसम खाता हूँ फिर इसके खिलाफ करना बेहतर समझता हूँ तो अपनी कसम का कफारा दे देता हूँ, और जो काम बेहतर मालूम होता है वो कर लेता हूँ। तो बेहतर सूरत क्या है कि ऐसी कसम का कफारा अदा किया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने भी अपनी कसम का कफारा अदा किया और फिर उसकी जो थे हजरत मिस्ता बिन उसासा की कफालत करने लगे। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाह माफ कर दे। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं हर सुबह हर शाम के दिन के उजालों में गुनाह करने वाले शाम के वक्त तुम मेरी तरफ लौट आओ कि मैं तुम्हें बख्श दूं, ए रात के अंधेरों में गुनाह करने वालों सुबह के उजाले में तुम मेरी तरफ लौट आओ कि मैं तुम्हें बख्श दूं ना। तो अल्लाह ताला की बख्शिश, अल्लाह का रहम बड़ा आम है, अनगिनत है, बेहिसाब है। तो हमें भी अल्लाह ताला से अपने आप को इस काबिल करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको माफ कर दे। और फिर हम इस काबिल कहाँ कि अपने आप को इस काबिल करें, बस अल्लाह ही मुझ पर और आप पर जो है ना वो रहम करें। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का ये किरदार इतना खूबसूरत है कि हमेशा के लिए कुरान में अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान कर दिया। और देखिये सहाबा बुरा नहीं मानते थे, उनकी गलती पर कुरान में आयतें नाजिल हो जाती थी, रसूलुल्लाह बात करते थे, वो बुरा भी नहीं मानते थे ना। हम बुरा मान जाते हैं कि दूसरों के सामने ऐसा कह दिया, ऐसे देख लिया, ऐसे कर दिया, हमारी बेइज्जती हो गई। तो इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है, नेकी करने और ना करने में है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है एक और अहम बात की तरफ मुतवज्जो करते हैं कि मुनाफिकीन का जुर्म क्या है, और फिर उस पे मुनाफिकीन के जुर्म पर उनकी जो है वो पकड़। और उसने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, इन्नल्लज़ीना यरमूना, बेशक वो लोग जो बोहतान लगाते हैं, यरमूना रामीन या तीर मारना, किसी पर तोहमत लगाना, और तीर मारना मादी और मानवी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मानी क्या है कि किसी पर जिना का इल्जाम लगाना, कि वो लोग जो तीर मारते हैं मोहसनात पर, पाक औरतों पर। कौन लोग हैं मोहसनात? पाक दामन औरतें। गाफिलाती, भोली भाली, बेखबर, सीधी सादी शरीफ औरतें जो छल बट्टे जानती भी नहीं हैं, उनके दिल बड़े पाक है, पता ही नहीं है। अलमोमिनाती, मोमिन औरतें हैं। यहाँ पे तीन सिफात औरतों की बताई गई, अलमोहसनाती, औरतें जो पाक दामन हैं, नंबर दो अलगाफिलाती, बेखबर, सीधी सादी शरीफ औरतें, अलमोमिनाती, मोमिन औरतें। तो लोग क्या करते हैं, तोहमत लगाते हैं। उनके किरदार पर जो है वो जिना का इल्जाम लगाते हैं या उनके ऊपर कुछ भी बहतान लगाते हैं। लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा ही जो है वो अजाब है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो क्या बात बता रहे हैं कि ऐसे मुनाफिक जो कि नेक औरतों पर, पाक दामन औरतों पर, सीधी सादी औरतों पर इल्जाम लगाते हैं, तो उन पर दुनिया में भी और आखिरत में जो है ना वो लानत करती गई। तो ये कौन लोग हैं, ये किनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमा रहे हैं इस आयत के बारे में? एक राय तो ये है कि वो लोग मुराद हैं जिन्होंने आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना पर इल्जाम लगाया था, है ना, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई खास तौर पर जो है वो सरे फहरिस्त है। और दूसरे जो है वो एक राय ये है कि ऐसी तोहमत लगाने वाले जो है वो आम लोग भी हो सकते हैं। एक तो ये खास वो वाकया ना, और दूसरा ये कि आज भी रहती दुनिया तक अगर कोई किसी मुसलमान औरतों पर इल्जाम लगाता है, कोई भी मर्द हो या औरत, तो उसके लिए ये बात जो है वो कही गई है कि पाक दामन मुसलमान औरत पर जिना की झूठी कोई तोहमत लगाए आजकल के जमाने में भी, तो वो सारे लोग इससे जो है वो मुराद हैं। तो दुनिया और आखरत दोनों जगह वो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए जाएंगे। लुइनु फी दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी जो है वो उन पर लानत और आखरत में भी। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब, तो इसके क्या मानी है? मुफस्सरीन की एक राय तो ये है कि दुनिया में उन पर अजाब ये है कि उन पर जो है वो अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे, और लानत का ये असर होगा कि वो लोग जो हैं उन पर फिर हद भी लगाई जाएगी, है ना, ये सजा है ना कि दुनिया में उन पर हद लगाई जाए। और कोई किसी पर जिना का इल्जाम लगाए, इसके लिए क्या इस्तलाह घड़ी गई इस्लाम में, क्या इस्लाह है? कजफ, कजफ, तो गोया के किसी पे जिना का इल्जाम लगाना, अगर कोई किसी पे चोरी करने का इल्जाम लगाए तो उसको कजफ नहीं कहते, बल्कि खास तौर पे इसका इल्जाम लगाने के लिए कजफ है। और जो लगाने वाला है उसको क्या कहते हैं? काजिफ। आप इसको याद रखें, फाइल के वजन पर है, फाइल काम करने वाले को कहते हैं ना फाइल, काजिफ। हाँ, तो इसी तरह जिस पर इल्जाम जिना का लगाया जाएगा वो कौन है? मकजूफ, और मफूल के वजन पर, मफूल जिस पर काम किया जाए। आप इस तरह इसको याद रखें, क्योंकि बाद लोग कहते हैं हमें ये कजफ और काजिफ और मकजूफ मुश्किल लग रहा है, तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। असल में आपको ये याद रखनी जो बात है वो ये है कि जिना की तोहमत लगाना, उसका इल्जाम लगाना, और जो जिना की तोहमत लगाना है उसको कजफ कहते हैं, लगाने वाले को काजिफ कहते हैं, जिस पर लगाया जाए उसको मकजूफ कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब ये है कि मुफस्सरीन जो हैं वो कुछ कहते हैं कि ये खास है हजरत आयशा रजी अल्लाह से मुतल्लिक है, तो जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था उन पर लानत कर दी गई दुनिया में भी और आखरत में भी। और उसमें भी मुफस्सरीन की ये राय, जिनको तो दुनिया में सजा मिल चुकी, हद लग गई, अब आखरत की पकड़ से वो महफूज रहेंगे। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई चूंकि मुनाफिक था और जो बुरे लोग हैं, तो उनको दुनिया की सजा तो नहीं मिली, आखिरत में उनके लिए जो है वो बड़ा अजाब है। दूसरी राय जो है वो क्या है कि ये वो कहते हैं कि ये आम है, ये हुक्म आम है, और अगर कोई भी तोहमत लगाने वाला है वो मुसलमान है, तो लानत का मतलब ये है कि वो उस पर हद लगेगी, वो काबिल हद है और मुसलमानों के लिए नफरत का वो बायस है। और अगर काफिर है तो आपको पता ही है कि वैसे ही काफिर तो दुनिया और आखिरत में वैसे ही लानत से, यानी अल्लाह की रहमत से महरूम होता है और लानत ज़्यादा है, काफिर तो वैसे ही लानत ज़्यादा है। और जो है वो जो लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो हिस्सा लेने वालों को जो है वो क्या है? लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी वो लोग लानत ज़्यादा हैं और आखिरत में भी। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है, आखिरत का अजाब और इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला उनकी बदअमालियों का पूरा पूरा बदला उनको देगा। फिर उनको पता चलेगा कि अल्लाह के फैसले जो थे वो सच्चे थे। और आपको ये बात भी पता है कि मैंने आपको ये हदीस सुनाई थी कि जो किसी पर जिना का इल्जाम लगाना जो है ये मुबेकात में से है। मुबेकात, मुबेकात जो है ये वबका से है, वो वाकाफ, और ऐसी तबाही को कहते हैं कि ऐसी तबाही को कहते हैं कि जिसमें इंसान के बचने की कोई उम्मीद ही ना हो, कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, कि अगर मैं एक तरफ जाती हूं तो कुआं है, दूसरी तरफ जाती हूं तो आग आग है, आग है ना। जैसे होता है ना कि आप बाज़ुकात किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए होते हैं कि दोनों तरफ आपको हलाकत ही हलाकत नजर आती है, तबाही ही तबाही, बर्बादी ही बर्बादी। तो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना उन 7 कबीरा गुनाहों में से है जो मुबेकात हैं। मुबेकात का मतलब क्या है? तबाह कौन है, जो जहां अगर कोई इंसान उनको करे तो फिर उनके लिए तबाही ही तबाही है। और उनमें से एक क्या है कि पाक दामन औरत पर जिना का इल्जाम लगाना। इसी तरह एक मौके पर रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना 100 साल के अमाल को तबाह करने के लिए काफी है। फिर फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनातुहुम, और वो लोग उस दिन को भूल ना जाएं, वो लोग जिनकी जबानें बहुत चलती हैं और वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, तो वो इस बात को भूल ना जाएं, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनातुहुम, कि जिस दिन गवाही देंगी उनकी जबाने हैं, वा ऐदीहिम और उनके हाथ, वा अर्जुलहुम और उनके पांव, बिमा कानू या मलून, जो वो करते रहे, जो दुनिया में उन्होंने जो है वो अमल किए, तो उनके हाथ पांव और उनकी जबाने जो हैं वो इनके खिलाफ जो है वो गवाही देंगी। तो ये आयत जो है ये बड़ी ही सख्त आयत है। तो आम तौर पे दुनिया में ये होता है कि इंसान जो है अपनी जबान से बातें करता है ना, और दिल में वो सोचता है, और बाज़ुकात ये होता है कि दिल में सोचा कुछ था लेकिन जबान से वो हेरा फेरी कर देता है, उसको बदल देता है ना। और लेकिन हम दुनिया में जो सोचते हैं, जो बोलना चाहते हैं, हमारी जबान हमारे ताबे है, हमारे जिस्म के अज़ा हमारे ताबे हैं, हम अपने जिस्म के अज़ा से जो चाहे काम ले सकते हैं, लेकिन आखिरत में हमारे जिस्म के अज़ा हमारे ताबे नहीं होंगे, बल्कि वहां पे क्या होगा कि दुनिया में इंसान ने जो ठीक ठीक काम किया होगा उसके मुताबिक उसके जिस्म के अज़ा जो है ना उसके खिलाफ जो है वो बोलेंगे। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उस दिन उसकी जबाने, उसके हाथ और उनके पांव जो हैं उनके करतूतों की गवाही देंगे, उनके खिलाफ जो है वो बोलेंगे। तो यहाँ पे ना डराया जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि हमें जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम अमल करते हैं, उस पर हमें अल्लाह ताला से जो है ना वो डरना चाहिए। और आपको पता है कि अगर हमारे जिस्म के अज़ा हमारे खिलाफ उठकर खड़े हो जाएं, हम अल्लाह ताला इनको कुव्वते गोयाई दे दे और ये हमारे खिलाफ बोलने लगे, तो फिर हम बचकर कहाँ जाएंगे, फिर हम छुपकर जो है वो कहाँ जाएंगे ना। जैसे मसलन आप देखें कि अगर किसी का फोन रिकॉर्ड कर लिया जाए, अगर किसी की वीडियो बना ली जाए कि उसने क्या काम किया था। जैसे एक दफा अमेरिका में एक मसला पेश आया कि एक मर्द ठीक नहीं था, वो रात को नाइट क्लब में जाता और ये वो सब कुछ, तो औरत को कहीं से पता चला, तो औरत ने जब अपने शौहर से बात की, वो टैक्सी चलाता था, तो रात को वो टैक्सी चलाता था, वो जाया करता था, तो मर्द नहीं माना। फिर जिसने औरत को खबर दी थी ना, उन्होंने वीडियो बनाकर उसकी ला के दी, और नशे में और बुराई में वैसे इंसान अंधा, और वो औरत बताने लगी। मैंने उसे कहा ना, जब उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, फोन पर वो बात करती थी अक्सर, तो ना मैंने उसे पूछा, इसलिए कि उसकी तो जरूरत नहीं है, अगर किसी को वैसे थोड़ी बहुत रहनुमाई अल्लाह ताला दे दे और हम उसकी कोई मदद कर सकें। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता कैसे चला कि तुम इतने वसूख से जो अपने शौहर से ऐसे कहती हो, तो कहने लगी कि ये मत पूछें आप, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं आता था कि मेरा शौहर ऐसा हो सकता है। तो जिन लोगों ने मुझे कहा, जब मैं उनके खिलाफ हुई और जब मैंने अपने शौहर से कहा, तो शौहर ने कहा पता नहीं तुम्हें कौन बहकाता है और ये और वो, तो फिर कहती जब उन्होंने मुझे वीडियो ला के दी ना, तो मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और और मैं बड़े सख्त मसाइल और मराहल में से गुजर रही हूँ ना। तो आप देखें कि ये साइंस की तरक्की है ना, ये सेल फोन और फोन रिकॉर्ड होते हैं, और कोई काम कर रहे हैं तो वीडियो बन रही है, और वीडियो बन जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए, तो कोई भी गुंजाइश नहीं होती। जैसे एक दफा किसी खानदान में जब झगड़ा हुआ तो भाभी को ना देवर ने फोन किया और गालियां देने लगा, और भाभी बड़ी अक्लमंद थी, उसने ना वो अब तो फोन जो सेल फोन है और जो रिकॉर्डिंग मशीन है उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग होती है, उसने साथ ही ना बटन दबा दिया। वो उसके बाद जब वो मुकरा तो उसने कहा कि मेरे पास तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, कैसे वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया ना। तो आप देखें कि दुनिया में भी इंसान क्या करता है कि विटनेस गवाहियां जमा कर लेता है। तो ये तो दुनिया की बातें हैं ना, आखिरत में क्या होगी जब हमारे जिस्म के अज़ा हमारे खिलाफ बोलेंगे। वो कहते हैं ना कि जो है वो फोन पर पूछा, फोन करके किसी ने कि अबू है, तो बच्चे ने कहा कि अबू वो पूछ रहे हैं कि अबू है, तो बाप ने कहा कि कह दो कि अबू जो है वो नहीं है या सो रहे हैं, तो बच्चे ने कहा कि वो अंकल अबू कह रहे हैं कि अबू सो रहे हैं, या जाके बता दो कि अबू घर पे नहीं है, अबू बता रहे हैं, है ना। बच्चा मासूम होता है ना, और बाज़ औक़ात हमारे बच्चे हमारे खिलाफ बोल देते हैं ना कि नहीं अम्मी बात ऐसे नहीं ऐसे है, अबू बात ऐसे नहीं ऐसे है। हम बच्चों को जो घूरी देते हैं उस वक्त तो घूरी ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, जब वो चले जाते हैं फिर हम कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ बोले, तुम चुप क्यों नहीं किए जब हम बात कर रहे हैं, तुम क्यों बोले ना। तो हम कहते हैं मेरा बच्चा होकर तुम मेरे खिलाफ बोला, और ये जिस्म के अजाब मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ, इस जबान की लज्जत के लिए दिन रात मैं और आप मेहनत करते हैं। कल की बात है, मैं सोच रही थी सारा वक्त जाकर जो है ना क्या किया कि खाना पकाया, कि ये भी कर ले ये भी कर ले ये भी कर ले, यहाँ तक कि जब निढाल हो गए तो कहा कि अच्छा अब तो अब कुछ और हो ही नहीं सकता ना। और क्या जबान की लज्जत कि ये पकाना है ये पकाना है अपने लिए दूसरों के लिए, तो आप लगते हैं ना, और इस जबान की लज्जत के लिए गइबत और चुगली करते हैं दूसरों की, कभी किसी का साथ देते हैं कभी किसी का, कभी झूठे का कभी सच्चे का। तो ये जबान, इसके मजे चटनियां अचार, और कभी वो जो है वो क्या कहते हैं प्याज का कचूमर भी बनाए ना वो डालकर, नींबू और हरी मिर्च और टमाटर डालकर, और कभी सलाद, और कभी क्या क्या मैं और आप नहीं करते ना कि मजा नहीं आता। तो और ये हाथ और पोंगे मैं सोच रही थी, ये जो ईदी ही मार जो लोहों में, अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि कैसे कैसे लोशन इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे कहते हैं कि बाल इसके ऊपर ना, हाथों पर ना हो, चेहरे पर ना हो, और लोशन का इस्तेमाल करना, फिर ये कि प्लास्टिक सर्जरी करना कि मैं बूढ़ी नजर ना आऊं, मैं खूबसूरत ही नजर आऊं, जो रंग है वो रंग नहीं, फिर ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं। तो क्या क्या मैं और आप अपने लिए, इन हाथ पांव के लिए नहीं करते। किसी की बात नहीं, औलाद की बात नहीं, आप सोचें वो वक्त आने वाला है जब मेरे और आपके अपने हाथ पांव मेरे और आपके खिलाफ गवाही देंगे। बड़ा अफसोस होता है ना कि जिसको दोस्त समझी थी मैं उसने मेरे खिलाफ गवाही दी, जो मेरे बच्चे थे आज वो मेरे खिलाफ हो गए, मेरा शौहर मेरी बीवी मेरे खिलाफ होगी, शौहर कहता है ना, मेरे दोस्त मेरे साथी नहीं है, मेरे माँ बाप आज मेरे नहीं है। हम इन्हीं बातों पे अफसोस करते हैं ना, तो किस चीज का अफसोस जब मेरा मेरा और आपका वजूद भी मेरे और आपके साथ जो है ना वफा नहीं करेगा। मुझे और आप पर एक ऐसा वक्त आने वाला है वो अल्लाह से वफा करेगा, अल्लाह ताला उसको हुक्म देंगे और हमारे जिस्म के अज़ा हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे अगर हमने इनसे गलत काम लिए। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अरजुलुहुम बिमा कानू यअमलून। और हमें कुरान से ये बात भी पता चलती है कि इंसान की जुलू तो हम उनकी खाले बोलेंगे, उनकी रानें उनकी हड्डियां हमारे जिस्म के अज़ा हमारे खिलाफ बोलेंगे। वो दिन क्यों ऐसा होगा, यौमइज़िन युवफ्फीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक्क व यअलमून। यौमइज़िन उस दिन, यानी वो कयामत का दिन होगा, वो हिसाब किताब का दिन होगा, वो बदले का दिन होगा। युवफ्फीहिमुल्लाहु, उस दिन वफा करेगा उनसे अल्लाह, अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा। दीना हुमुल हक्का, दीन जो है तो आपको पता ही है कि दीन के मुख्तलिफ मानी हैं, और यहाँ पे दीन बदले और जजा के मानी में है। दीना हुम उनका बदला, अल हक्का हक, यानी अल्लाह उनको ऐसा नहीं कि वाजबी बदला देगा ऐसे ही बस थोड़ा बहुत, नहीं, अल्लाह ताला उस दिन उनको पूरा पूरा बदला देगा, हक बिल्कुल ठीक सच। दुनिया में तो हालात में पर्दा पड़ जाता है ना, बहुत सी गलत फहमियां होती हैं, आप बहुत से अच्छे काम करते हैं और लोग आपकी नेकी का बदला आपको नहीं देते। बहुत दफा ऐसा होता है, आपकी नीयत कुछ होती है, आप कर कुछ रहे होते हैं, समझने वाले समझ कुछ रहे होते हैं, और गलत फहमी होती है कि फलां जो है वो खा गया फलां को, फलां फलां को पूछता नहीं, फलां फलां को देता नहीं, फलां जो है वो उसके साथ ज्यादती कर रहा है। तो आखिरत का दिन ऐसा दिन होगा, हर चीज वाजे हो जाएगी, सारी जो लोगों की बातें हैं ना, अल्लाह ताला उसको बेनकाब कर देंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो बात बता रहे हैं कि मुझे खूब पता है, मैं हर एक की बात से वाकिफ हूँ, यौम युवफ़ीहुमुल्लाहु दीनहुमुल हक़, अल्लाह ताला उस दिन वो बदला उनको देगा जो भरपूर होगा, और वो बदला क्या होगा, अल हक़, वो उसके मुस्तहिक होंगे, बिल्कुल ठीक ठीक। फ़यालमूना अन्नल्लाहा हुवा अल हक़ुल मुबीन, और अल्लाह ही है, फ़यालमूना, लोगों को पता चल जाएगा कि अन्नल्लाहा, ये कि अल्लाह, हुवा अल हक़ुल मुबीन, कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला। अल्लाह खुद हक है और खुद सच है, और फिर वो जो भी मामलात होंगे उनको हक और सच करके जो है वो दिखा देगा। तो ये आयतें भी बड़ी सख्त हैं, बड़ी अहम हैं, इस लिहाज से बहुत आम है कि कयामत का दिन लोगों बड़ा सख्त होगा, जरा बराबर नेकी और जरा बराबर जो बुराई है उसको खोल कर जो है वो रख दिया जाएगा। तो इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा, हर शख्स को पता चल जाएगा कि अल्लाह के कानून अदल के मुताबिक उसकी क्या सजा या जजा है। मसलन आप देखें कि क्लास के अंदर एक चीज को हम तय कर लेते हैं कि पेपर जो है वो पीर को हो, आपने होम असाइनमेंट मंडे को जमा करवानी है ना, तो सबके लिए एक उसूल है ना, और वाकई कुछ लोगों का उज़्र शरई होता है, लेकिन बाज लोग अपनी एक रूटीन बना लेते हैं कि वो वक्त पे अपनी होम असाइनमेंट जमा नहीं करवाते, वो ज्यादा टाइम लेते हैं काम करने के लिए और बाकी लोगों को कम टाइम मिलता है, ठीक है ना, और नतीजा क्या निकलता है, अदल नहीं होता ना, टीचर भी अदल नहीं करता। तो हर एक के साथ अदल का होना और अदल का किया जाना, मेरे और आपके अंदर तो कमी बेशी हो सकती है ना, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना पूरा पूरा अदल करेगा। तो हर एक के साथ अदल करना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपने रवैयों को चेंज करो, अपनी बातें अपनी हरकत सकनात पर तकवा के पहरे बिठाओ, और अपनी जबान से बातों को इधर उधर ऐसे ही ना ट्रांसफर किया करो, ऐसे ना बयान किया करो। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द जो है वो खबीस औरतों के लिए हैं। इसका एक तर्जमा और भी किया गया, उसके उसमें क्या तर्जमा है कि वो ये कहते हैं कि अल खबीसातु, खबीसात से मुराद बुरे कलमात हैं। एक तर्जमा तो ये है ना, अल खबीसात से मुराद बुरी औरतें हैं, खबीस औरतें हैं। दूसरा तर्जमा क्या है, अल खबीसात से मुराद बुरे कलमात हैं। अल खबीसातु, बुरी बातें बुरे कलमात जो है वो क्या है, लिल खबीसीना, वो बुरी बातें बुरे लोगों के लिए हैं। वल खबीसूना, इसे मुराद क्या है कि बुरे लोग हैं, कि वल खबीसूना और बुरे लोग जो हैं वो लिल खबीसाती, वो बुरी बातों के लिए हैं। समझ आ गई बात की, कि बाज लोगों ने खबीसात का तर्जमा जो है वो बुरी औरतों की बजाय क्या लिया है, बुरे कलमात, के बुरी बातें, ये जो होते हैं ना तोहमत लगाना और ऐसी बातें करना, बुरे लोग बुरी बातें करते हैं, उनका काम ही है बुरी बातें करना। वत तो ये बात हूँ लित तो ये बीना, वत तो ये बूना लित तो ये बात, और पाकिजा औरतें पाकिजा मर्दों के लिए हैं। वत तो ये बात हूँ पाकिजा औरतें लित तो ये बीना पाकिजा मर्दों के लिए हैं। वत तो ये बूना और पाकिजा मर्द लित तो ये बात पाकिजा औरतों के लिए हैं। तो इसके मानी क्या है कि वक्त ये बात का एक तर्जुमा है नेक औरतें, ठीक है, पाकीजा औरतें, वो औरतें जिनका दामन पाक है, तो पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिए और पाकीजा मर्द पाकीजा औरतों के लिए। दूसरा इसका तय्यबात का तर्जुमा है अच्छे कलमात, अच्छी बातें, तो अच्छे कलमात जो हैं वो किसके लिए हैं, अच्छे लोगों के लिए हैं। लित तय्यबीना अच्छे लोगों के लिए हैं, वत तय्यबूना और अच्छे लोग जो हैं लित तय्यबात, वो अच्छी बातें करते हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ये बता रहे हैं कि जो अच्छी औरतें होती हैं वो अच्छे मर्दों के लिए होती हैं, जो बुरी औरतें होती हैं वो बुरे मर्दों के लिए जो है वो होती हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर इसका तर्जमा हम पाकीजा औरतें ले लेते हैं तो जो पाकीजा औरतें होंगी वो पाकीजा बातें भी करेंगी। यानी अगर कोई एक आदमी पाकीजा है, वो तैयब है, औरत नेक है, तो उसकी हर चीज भी नेक है ना, उसकी बातें भी नेक हैं, उसके कलमात भी नेक है, तो वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है कि इसका तर्जमा जो है वो अच्छी बातें किया जाए। और जो बुरे लोग होते हैं, अगर बुरी औरतें हैं तो बुरी बातें भी करेंगी तो बुरा बुरी है ना, उनकी सीरत, उनका मिजाज, उनका किरदार जो है वो सब कुछ जो है वो बुरा है। तो इस आयत में जो है वो आप पीछे जैसे एक दफा ये बात आप पढ़ चुकी ना कि अज़ानी ला यनकहु इल्ला ज़ानिया, के जानी निकाह नहीं करता मगर जानिया के साथ या फिर मुशरिका के साथ। तो आप ये बात जो है ये पहले जो है ये बात भी आप पढ़ चुकी कि अज़ानी ला यनकहु इल्ला ज़ानियतन और मुशरिका, व ज़ानियतु ला यनकहुहा इल्ला ज़ानिन और मुशरिक, व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन, कि जानी निकाह ना करे मगर जानिया या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया अहले ईमान पर। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि जो है वो जो खबीस मर्द या औरतें हैं वो एक दूसरे के लिए हैं। जैसे खबीसात से मुराद जानी मर्द और औरतें भी हो सकती हैं, जानी मर्द और औरतें भी हो सकती हैं, और इसी तरह तय्यबात और तय्यबून से मुराद पाक दामन मर्द और औरतें मुराद हैं। दूसरे इसके मानी नापाक बातें नापाक मर्दों के लिए, नापाक मर्द नापाक बातों के लिए, और पाकीजा बातें पाकीजा मर्दों के लिए और पाकीजा मर्द पाकीजा बातों के लिए, या फिर नापाक बातें वही मर्द और औरतें करते हैं जो खुद नापाक होते हैं, और पाकीजा बातें करना पाकीजा मर्द और औरतों का शेवा होता है। तो यहाँ पर इल्जाम क्या लगाया गया, यहाँ पे बात क्या कही गई, अल्लाह ताला ने इशारा किया इस बात की तरफ कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर अगर किसी ने नापाकी का इल्जाम लगाया है तो बातें करने वाले कौन थे, खुद नापाक थे, अब्दुल्ला बिन उबई खुद नापाक थे, और जिन्होंने बरात की वो पाक थे, जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो तो बहुत ही नेक है ना, तो ये इसके मानी है। तो एक इसके मानी तो ये है कि उसमें हिस्सा लेने वाले जो थे वो बुरे लोग थे, खबीस थे, और गोया के अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो खबीस है, और तैयब और तैयबा से मुराद रसूल अल्लाह हैं और आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा है, और इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई चूंकि खबीस है तो खबीस बीवी उसको मिलेगी। आयशा रजी अल्लाह अन्हा खुद नेक हैं, तैयबा हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयब है। और जो है वो मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि उलाइका मुबर्राउन मिम्मा यकूलून, इनका दामन पाक है, ये बरी हैं, मुबर्राउन दामन पाक है, ये बरी हैं, इनकी बरात कर दी गई, मिम्मा यकूलून जो ये बातें करते हैं। तो किन की बरात की गई, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की, हजरत सफान रजी अल्लाह अन्हो की, तो ये अल्लाह के नेक बंदे थे। मिम्मा यकूलून से मुराद कौन है, अब्दुल्ला बिन उबई, और जो जिन्होंने वाकया इसमें हिस्सा लिया। तो अब्दुल्ला बिन उबई की बहतान तराशी और उसके साथियों की जो बहतान तराशी थी इससे ये लोग पाक हैं, उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, तो जो बातें ये लोग बनाते हैं इनसे ये लोग बिल्कुल पाक और साफ हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़े करीम। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो इनामात का खास तौर पर जिक्र किया, तो मग़फ़िरत इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इनको जो है वो बख्शा है, यानी अल्लाह ताला इनको जो है वो माफ करने वाला है। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि अगर इनसे जो गलतियां हुई हैं, जो छोटे मोटे गुनाह हुए हैं, तो अल्लाह उनको बख्श देगा। और दूसरी बात, रिज़्कुन करीम से मुराद क्या है, पहले भी आप इसको पढ़ चुकी हैं कि कहते हैं कि इस रिज़्कुन करीम से मुराद जन्नत की रोजी है, اس سے مراد وہ رزق ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا، وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نیک لوگوں کو جو ہے وہ عطا کرے گا. اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہی ہے کہ یہ رزق ان کریم، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے جامع تعبیر کے طور پر آتے ہیں. اور جنت میں تو وہی جائے گا نا جس کی مغفرت ہو جائے، جس کو اللہ بخش دے، اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے. تو یہ پوری جو آیات تھیں، پورا جو سبق تھا، اس میں جو خاص بات ہمارے سامنے نمایاں ہو کر نچوڑ کے طور پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اپنا تزکیہ کریں، اور دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر منافقانہ کردار نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کی ساکھ اور ان کی اخلاقی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کے متعلق اگر ان کے کوئی کان میں بات ڈال دے نا تو اس کو لے کر اڑ کھڑے ہوں، یعنی اس بات کو لے اڑے، بلکہ ان کو آپس میں حسن زن کرنا چاہیے. ان کو کسی بات کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ان کو ثبوت نہ مل جائے، ثبوت دیں اس کا نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے، میرے اور آپ کے گناہ معاف کرے، اور آخرت کا جو احساس ہے، آخرت کی جواب دہی کا، جہاں جسم کے عذاب ہی ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں اور انسان کے خلاف وہ بولیں گے اور وہ سچی گواہیاں دیں گے جو بھی میں نے اور آپ نے کیا ہوگا، تو وقت بڑا ہی مشکل ہوگا نا کہ اپنا وجود بھی ہمارے خلاف بولنا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس مشکل سے بچائے، اور صرف عفو ہی نہیں بلکہ ولیصفہو کا جو رویہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے، اور جن کے اندر عفو درگزر کے ساتھ جو ہے وہ یہ رویہ، ولیصفہو کا جن کا رویہ ہے نا، وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر کوئی کینہ اور قدورت نہیں ہوتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، معصوم پرندوں کی طرح، ان کے دل میں کوئی کینہ قدورت نفرت دوسروں کے خلاف باتیں نہیں ہوتی ہیں. اور بعض لوگوں کے دلوں میں جب ہوتی ہیں وہ دوسروں میں بھی بیان کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو برا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے مومنانہ دل والا بنائے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوں اور دوسروں کے خلاف ہمارے دلوں میں کوئی بات نہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.